नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं, सुंदर वेदांतम की ऑयल एंड वाटर, हाउ एनर्जी शेप्स सोसाइटीज कंट्रीज एंड द वर्ल्ड। ये किताब सिर्फ आप कह सकते हैं एनर्जी सेक्टर का कोई सूखा टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये लेखक के अपने काफ़ी निजी अनुभवों का एक संस्मरण भी है, जब वो 1980s के आखिर में भारत में एक ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म पर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर थे। तो इसमें आपको इंजीनियरिंग के कमाल मिलेंगे, जोखिम भरे किस्से हैं, मानवीय पहलू हैं और हाँ, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स भी, मतलब सबका एक अनूठा संगम है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब से कुछ सबसे अहम जानकारियां और किस्से निकालें और लेखक के अनुभवों और उनके विश्लेषण के जरिए ऊर्जा की इस जटिल और अक्सर मतलब अनदेखी दुनिया को थोड़ा बेहतर समझें। पर एक बात बिल्कुल शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है, आज जो हम बात कर रहे हैं वो तो बस एक झलक जैसी है, सतह को छूने जैसा। सुंदर वेदांतम की किताब ऑयल एंड वाटर में इससे कहीं ज्यादा गहराई है, आंकड़े हैं, बारीकियां हैं, किस्से और विश्लेषण भरे पड़े हैं। सच कहें तो ये जानकारियों का एक समंदर है और हम तो बस कुछ लहरों पर ही नजर डाल रहे हैं आज। इसलिए अगर इस चर्चा से आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, जो हमें उम्मीद है कि बढ़ेगी, तो हम पुरजोर सलाह देंगे कि आप ये किताब जरूर खरीदें और पूरी पढ़ें। ये हार्ड कवर में है, सॉफ्ट कवर में है, ई बुक भी है और अच्छी बात यह है कि ऑडियो फॉर्मेट में भी उपलब्ध है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं या सुन भी सकते हैं। तो चलिए अब गोता लगाते हैं इस किताब की दुनिया में। शुरुआत करते हैं समुद्र के बीच बने उन फौलादी टापुओं से, यानी ऑफशोर प्लेटफॉर्म। वहां जिंदगी कैसी होती है, लेखक अपने पहले अनुभव के बारे में बताते हैं कि प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर वो तो मतलब दंग रह गए। उन्हें लगा जैसे किसी 5-स्टार होटल में आ गए हों।
सच में?
जी हाँ, खाने की वैसी शानदार व्यवस्था, रहने के लिए आरामदायक केबिन, फिल्में देखने के लिए छोटा सा थिएटर भी, टेबल टेनिस, जिम, जमीन की दुनिया से एकदम अलग। लेकिन काम का तरीका वो भी उतना ही अनोखा था। 14 दिन लगातार काम, रोज 12 घंटे की शिफ्ट, इसमें रात की ड्यूटी भी शामिल थी और उसके बाद सीधे 14 दिन की छुट्टी। कैसा अजीब सा विरोधाभास है ना, एक तरफ इतनी सुविधाएं, दूसरी तरफ इतना कठिन रूटीन।
बिल्कुल, और ये विरोधाभास जो है ये बेवजह नहीं है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म, आप सोचिए, बेहद अलग थलग बंद और खतरनाक जगह होती हैं, मीलों तक सिर्फ समुद्र और आप एक मेटल के स्ट्रक्चर पर। ऐसे में वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनका मनोबल बनाए रखना और सबसे जरूरी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये मैनेजमेंट की पहली प्राथमिकता होती है। ये जो सुविधाएं हैं ये उसी कोशिश का एक हिस्सा हैं एक तरह से। लेकिन जैसा किताब भी इशारा करती है, ये 14 दिन काम और 14 दिन छुट्टी वाला जो चक्कर है, इसका कर्मचारियों पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता था। कुछ लोगों को, खासकर जो अविवाहित थे, युवा थे, उन्हें यह बड़ा रोमांचक लगता था। लेकिन कई शादीशुदा लोग परिवार से इतने लंबे अलगाव से जूझते थे, उन्हें अक्सर ये महसूस होता था कि वो न पूरी तरह घर के हैं न पूरी तरह काम के। एक अजीब सी, मतलब कहीं का न होने वाली भावना। ये सुविधाएं कहीं ना कहीं उस अलगाव की कीमत भी थी, एक तरह का सोने का पिंजरा भी बन सकती थी।
सोने का पिंजरा, हाँ, ये पहलू वाकई सोचने लायक है। और इस पिंजरे को चलाने वाली इंजीनियरिंग, वो तो किसी चमत्कार से कम नहीं। किताब हमें इस दुनिया की बारीकियों में भी ले जाती है, कैसे वो डॉल्फिन जैसे हेलीकॉप्टर्स रोज कर्मचारियों को मीलों दूर समुद्र में बने प्लेटफॉर्म तक लाते ले जाते हैं, कैसे जैकअप रिग जैसी विशाल मशीनें समुद्र तल पर अपने पैर जमाती हैं, फिर समुद्र के नीचे मीलों गहरे कुएं खोदना जिसके लिए हीरे की नोक वाली ड्रिल बिट्स का इस्तेमाल होता है, सोचिए जरा।
और एक कमाल की तकनीक है जिसका जिक्र है, दिशात्मक ड्रिलिंग, डायरेक्शनल ड्रिलिंग।
हाँ,
ये बहुत महत्वपूर्ण है।
इसका मतलब है कि एक ही महंगे प्लेटफॉर्म से समुद्र के नीचे अलग अलग दिशाओं में टेढ़ी सुरंगें खोदकर कई तेल भंडारों तक पहुंचना।
बिल्कुल,
सोचिए इससे कितना खर्च बचता होगा और समुद्र के तल पर भी कम छेड़छाड़ होती होगी। ये सब सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना?
हाँ, लगता तो है, मगर जहाँ इतना बड़ा कमाल है वहाँ उतना ही बड़ा खतरा भी छिपा है। किताब वेल ब्लोआउट जैसी भयानक घटनाओं का जिक्र करती है।
हाँ, ब्लोआउट
ये तब होता है जब कुएं से तेल और गैस का दबाव मतलब बेकाबू हो जाता है और वो एक विस्फोटक फुवारे की तरह बाहर निकलने लगता है। इसे रोकने के लिए ही ब्लोआउट प्रिवेंटर नाम के विशाल और बेहद मजबूत वॉल्व लगाए जाते हैं।
और किताब हमें याद दिलाती है कि 2010 की जो डीप वाटर होराइजन त्रासदी हुई थी,
हाँ वो भयानक हादसा था
जिसमें 11 लोगों की जान गई और मेक्सिको की खाड़ी में भयंकर तेल रिसाव हुआ, उसका एक मुख्य कारण इसी ब्लोआउट प्रिवेंटर का सही समय पर काम ना करना था।
बिल्कुल, इंजीनियरिंग की प्रिसिजन और दबाव की भयावहता यहाँ समझने लायक है। किताब बताती है कि समुद्र तल से 2 किलोमीटर नीचे तेल के भंडार में दबाव 2000 PSI तक हो सकता है, पाउंड प्रति वर्ग इंच।
2000 PSI?
हाँ, इसे समझने के लिए सोचिए आपकी कार के टायर में हवा का दबाव कितना होता है, करीब 30-35 PSI।
हाँ बिल्कुल,
यहाँ हम उससे 50-60 गुना ज्यादा दबाव की बात कर रहे हैं। इस जबरदस्त दबाव वाले ज्वलनशील पदार्थ को सिर्फ 1-2 सेंटीमीटर चौड़े पाइप से नियंत्रित तरीके से निकालना, यही असली इंजीनियरिंग चुनौती है। और सुरक्षा, इसके लिए SSSV और SSV जैसे फेल सेफ सिस्टम होते हैं, सब सरफेस सेफ्टी वॉल्व और सरफेस सेफ्टी वॉल्व। इनका मूल सिद्धांत ये है कि अगर प्लेटफॉर्म पर कोई बड़ी गड़बड़ी हो, जैसे आग लग जाए या दबाव कम हो जाए, तो ये वाल्व अपने आप बंद हो जाएं और कुएं से तेल का बहाव रोक दें। जान बचाने के लिए ये वाल्व एक तरह से आखिरी सुरक्षा कवच की तरह हैं।
सुरक्षा का एक और पहलू है गैस फ्लेयरिंग, जिसका जिक्र किताब में काफी रोचक अंदाज में है।
हाँ।
अक्सर हम देखते हैं ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर दूर से एक जलती हुई मशाल दिखती है।
हाँ, वो फ्लेयर स्टैक।
पहली नजर में लगता है कि ये तो कीमती गैस की बर्बादी है, क्यों चला रहे हैं इसे। लेकिन किताब समझाती है कि पुराने समय में, खासकर जब गैस को प्रोसेस या ट्रांसपोर्ट करने के साधन सीमित थे, तब सुरक्षा और आर्थिक कारणों से अतिरिक्त गैस को जला देना ही सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता था।
सही बात है, उसे प्लेटफॉर्म पर जमा होने देना कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता था।
बिल्कुल, हालांकि अब पर्यावरण की चिंताओं के चलते इसे बहुत कम करने की कोशिशें हो रही हैं।
और लेखक इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी सुनाते हैं।
अच्छा?
हाँ, एक बार रात में उनके प्लेटफॉर्म का फ्लेयर अचानक बुझ गया।
हाँ।
अब सोचिए बीच समुद्र में अंधेरी रात में उस मशाल को दोबारा जलाना कितना जरूरी और मुश्किल काम होगा।
हाँ, मुश्किल तो रहा होगा।
इसके लिए एक खास फ्लेयर गन का इस्तेमाल किया गया, जो किसी बंदूक की तरह आग का गोला फेंकती थी ताकि दूर से ही फ्लेयर स्टैक तक चिंगारी पहुंचाई जा सके। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। वाह, ये फ्लेयर गन वाला किस्सा दिखाता है कि कैसे असाधारण परिस्थितियों में, मतलब असाधारण समाधान निकालने पड़ते हैं।
हाँ बिल्कुल, और ये सारी अद्भुत इंजीनियरिंग और जोखिम ये सिर्फ मशीनों तक ही सीमित नहीं है, इन्हें चलाने वाले जो इंसान हैं उनके अनुभव भी उतने ही जटिल और सीखने लायक हैं, जैसा किताब में कई किस्सों से पता चलता है। एक घटना का जिक्र है जब लेखक ने हेलीकॉप्टर सुरक्षा नियमों का एक छोटा सा उल्लंघन कर दिया। सजा के तौर पर उन्हें पूरी टीम को सुरक्षा पर एक लेक्चर देने को कहा गया।
अच्छा,
अब ये सुनने में तो सजा लगती है, पर अनजाने में ये उनके लिए फायदेमंद साबित हुई।
अच्छा, कैसे?
इससे ना सिर्फ उनकी अपनी समझ बढ़ी, बल्कि टीम के सामने अपनी बात रखने और साथियों के बीच एक तरह से सम्मान पाने का मौका भी मिला। कभी कभी गलतियां भी अनचाहे रास्ते खोल देती हैं ना?
सही कहा।
एक और सबक उन्हें तब मिला जब उन्होंने एक सहकर्मी पर भरोसा करके एक महंगा उपकरण उसके हवाले कर दिया और वो खराब हो गया। ऐश ना हो और दांव ऊंचे हो, वहां आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना महंगा पड़ सकता है।
हाँ ये तो है, विश्वास बहुत जरूरी है पर सावधानी भी।
और शायद सबसे दिलचस्प किस्सा है एक मुख्य पंप का, जो बार बार बड़े रहस्यमयी तरीके से बंद हो रहा था। लेखक और उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन टीम को शक हुआ कि कहीं प्रोडक्शन टीम जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही, शायद उन्हें परेशान करने के लिए या अपना काम आसान करने के लिए। माहौल में तनाव सा घुल गया था।
अच्छा, ऑफिस पॉलिटिक्स टाइप,
कुछ वैसा ही। तो सच्चाई का पता लगाने के लिए लेखक ने एक तरकीब सोची। उन्होंने बिना किसी को बताए पंप के कंट्रोल सर्किट में एक छिपा हुआ रिले लगा दिया। ये रिले रिकॉर्ड रखता था कि अलार्म बजा था या नहीं, भले ही कंट्रोल रूम में ऑपरेटर उसे तुरंत रीसेट कर दे।
वाह, क्या दिमाग लगाया।
और हुआ भी वही, अगली बार जब पंप बंद हुआ तो छिपे हुए रिले की लाइट जल रही थी। लेखक को लगा हाँ, पकड़ लिया चोर को। लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो पता चला कि मामला किसी की शरारत का नहीं था।
अरे तो फिर?
बल्कि एक खराब सेंसर का था। वो सेंसर कभी कभी बहुत ही थोड़े समय के लिए गलत सिग्नल भेजता था, जिसे मुख्य कंट्रोल सिस्टम पकड़ नहीं पाता था, लेकिन पंप बंद हो जाता था।
ओह, तो शक बेवजह था।
बिल्कुल।
ये किस्से ये महज ऑफिस पॉलिटिक्स या तकनीकी समस्याओं की कहानियां नहीं हैं। ये बहुत गहराई से दिखाते हैं कि कैसे एक बंद, उच्च दबाव वाले और बाहरी दुनिया से कटे हुए माहौल में इंसानी रिश्ते, भरोसा, शक, अहंकार और गलतफहमियां काम करती हैं। जहां हर गलती के गंभीर परिणाम हो सकते हों, आर्थिक भी और जान का खतरा भी, वहां आपसी विश्वास कितना नाजुक हो जाता है। एक छोटा सा खराब सेंसर भी टीमों के बीच कैसे शक और तनाव पैदा कर सकता है। ये अनुभव सिर्फ ऑफशोर प्लेटफॉर्म के लिए ही सच नहीं है, ये किसी भी तनावपूर्ण टीम या संगठन में प्रासंगिक हो सकते हैं। यही बात इस किताब को खास बनाती है। ये तकनीकी दुनिया के मानवीय पहलू को उजागर करती है।
बिल्कुल सही कहा। तो ये थे कुछ व्यक्तिगत अनुभव जो दिखाते हैं कि कैसे बड़े तकनीकी कामों में भी इंसानियत की छोटी छोटी बातें कितनी मायने रखती हैं। लेकिन किताब यही नहीं रुकती, ये इन अनुभवों को बड़े वैश्विक मुद्दों से भी जोड़ती है। दिखाती है कि कैसे एक प्लेटफॉर्म पे निकलने वाला तेल पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला सकता है।
हाँ।
जैसे किताब डच डिजीज के सिद्धांत पर बात करती है।
हाँ, डच डिजीज
ये एक आर्थिक स्थिति है जिसमें किसी देश को अचानक ढेर सारे प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल या गैस मिल जाते हैं और उसकी वजह से उसकी बाकी अर्थव्यवस्था जैसे खेती या कारखाने वो पिछड़ने लगते हैं।
हाँ, सारा ध्यान और निवेश उसी एक संसाधन पर चला जाता है।
बिल्कुल। और बाकी सेक्टर बर्बाद हो सकते हैं। वेनेजुएला इसका एक दुखद उदाहरण है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक होने के बावजूद आज उसकी अर्थव्यवस्था और समाज गहरे संकट में है, कुछ हद तक इसी डच डिजीज की वजह से। किताब का एक बड़ा सबक यही है कि कैसे जमीन से निकला खजाना अक्सर जमीन पर काम करने वाले जैसे किसान या फैक्ट्री मजदूर उनकी रोजी रोटी छीन सकता है।
ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
फिर किताब फ्रैकिंग तकनीक के उदय की कहानी बताती है।
हाँ, फ्रैकिंग,
जिसने काफी कुछ बदल दिया।
इस तकनीक में जिसमें जमीन के नीचे चट्टानों को तोड़कर तेल और गैस निकाला जाता है, अमेरिका को अप्रत्याशित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बना दिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब और रूस को भी पीछे छोड़ दिया।
हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था जियोपॉलिटिक्स में।
लेकिन इसके साथ ही गंभीर सवाल भी उठे, पानी के प्रदूषण का खतरा, छोटे भूकंपों की आशंका और जमीन के इस्तेमाल को लेकर सामाजिक तनाव। किताब इन दोनों पहलुओं को सामने रखती है, मतलब फायदे भी और चिंताएं भी। बिल्कुल, एक संतुलित दृष्टिकोण देती है।
इसके अलावा किताब ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की भूमिका को भी समझाती है कि कैसे ये देश मिलकर तेल के उत्पादन को नियंत्रित करके वैश्विक कीमतों पर असर डालने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे की जटिल राजनीति और अर्थव्यवस्था क्या है।
हाँ, ओपेक का रोल तो हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है।
और एक बेहद दिलचस्प अध्याय है आर्कटिक क्षेत्र में छिपे तेल और गैस के विशाल भंडारों पर और कैसे विभिन्न देश उस पर अपने दावे बढ़ा रहे हैं।
आर्कटिक, हाँ, वो अगला बड़ा अखाड़ा बन सकता है।
जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, रूस, कनाडा, डेनमार्क जैसे देश समुद्र के नीचे की जमीन पर अपना हक जता रहे हैं।
किताब उस नाटकीय घटना का भी जिक्र करती है जब रूसी पनडुब्बियों ने उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तलहटी में अपना झंडा गाड़ दिया था।
हाँ, वो काफी सिंबॉलिक कदम था।
मानो वे नई दुनिया की खोज कर रहे हों। ये दिखाता है कि ऊर्जा की खोज कैसे नई भू राजनीतिक सरहदें बना रही है। ये सारे उदाहरण, वेनेजुएला हो, फ्रैकिंग हो, ओपेक हो या आर्कटिक, ये यही साबित करते हैं कि ऊर्जा, खासकर तेल और गैस, सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये भू राजनीति का एक शक्तिशाली हथियार है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। किताब इस जटिल ताने बाने को बड़ी खूबसूरती से परत दर परत खुलती है। और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा आपने कहा, कि किताब सिर्फ जीवाश्म ईंधन पर ही अटकी नहीं रहती है। लेखक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा, उनकी संभावनाओं और उनकी अपनी चुनौतियों पर भी संतुलित नजर डालते हैं।
हाँ, जैसे भंडारण की समस्या या जमीन का इस्तेमाल।
बिल्कुल, यहाँ तक कि वे न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी भविष्य की तकनीक की क्षमता और उसकी कठिनाइयों पर भी चर्चा करते हैं। वो तकनीक जो शायद हमें साफ और लगभग असीमित ऊर्जा दे सकती है अगर हम उसे साधने में कामयाब हो जाएं। किताब किसी एक ऊर्जा स्रोत का महिमा मंडन नहीं करती, बल्कि एक यथार्थवादी तस्वीर पेश करती है कि हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं।
तो ये थी सुंदर वेदांतम की किताब ऑयल एंड वाटर, हाउ एनर्जी शेप्स सोसाइटीज, कंट्रीज एंड द वर्ल्ड की दुनिया की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है कि ये ज्ञानवर्धक और दिलचस्प रही होगी। हमने समुद्र के बीच की जिंदगी की चुनौतियों और अनोखी सुविधाओं को देखा, इंजीनियरिंग के चमत्कारों और उनके साथ जुड़े रिस्कों को समझा, दबाव भरे माहौल में इंसानी रिश्तों की जटिलताओं को महसूस किया और ऊर्जा के वैश्विक खेल के कुछ परतों को खोलने की कोशिश की। लेकिन जैसा हमने शुरू में और बीच में भी कहा, ये चर्चा किसी भी तरह से पूरी कहानी नहीं है।
बिल्कुल नहीं। तेल और गैस की इस दुनिया को, इसके मानवीय पहलुओं को और हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारे भविष्य पर इसके गहरे असर को पूरी तरह समझने के लिए आपको गहराई में उतरना होगा। और उसके लिए हम एक बार फिर श्रोताओं को सुंदर वेदांतम की एक किताब ऑयल एंड वाटर जरूर पढ़ने की सलाह देते हैं। याद रखिएगा, ये हार्ड कवर में है, सॉफ्ट कवर में है, ई बुक है और ऑडियो फॉर्मेट में भी उपलब्ध है, तो अपनी पसंद के तरीके से आप इसका आनंद ले सकते हैं।
इसमें आपको और भी बहुत से अनदेखे किस्से, तकनीकी गहराइयां और विश्लेषण मिलेंगे जिन्हें हम आज छू भी नहीं पाए।
हाँ बिल्कुल, ये किताब वाकई कई सवाल खड़े करती है और सोचने पर मजबूर करती है। एक अंतिम विकार जो मेरे मन में घूम रहा है वो ये है, किताब हमें दिखाती है कि जीवाश्म ईंधन निकालने और उसे हम तक पहुंचाने में कितनी ज्यादा मानवीय प्रतिभा लगी है, कितने संसाधन लगे हैं और कितना बड़ा जोखिम शामिल है। दशकों से हमने इसमें महारत हासिल की है। अब अगर हमें वाकई स्थायी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ पूरी तरह से बढ़ना है तो जरा सोचिए, इसके लिए हमें किस तरह की सामूहिक इच्छा शक्ति चाहिए होगी, कितने बड़े पैमाने पर निवेश और किस तरह के क्रांतिकारी नवाचार की जरूरत होगी। और शायद जैसा कि लेखक के अपने अनुभव बार बार इशारा करते हैं, इस बड़े बदलाव में सबसे बड़ी बाधाएं या सबसे बड़े मददगार शायद तकनीकी न हो बल्कि वही छिपे हुए मानवीय कारक हों। आपसी विश्वास या अविश्वास, डर या साहस, लालच या सहयोग की भावना। शायद असली लड़ाई तकनीक से ज्यादा इंसान के स्वभाव से है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।